एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
Jesus power, super power. चमकता तारा यीशु, जग में सबसे प्यारा यीशु है। चमकता तारा यीशु, जग में सबसे प्यारा यीशु, उसके आगे झुकते सभी, उसकी महिमा गाते सभी।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक फिर से आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आता हूँ। आज आप सबों को परमेश्वर का वचन से आशीष मिले। परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आइए हम परमेश्वर से दुआ करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे बच्चे तेरे सम्मुख आते हैं, हम सबों को तू ग्रहण कर, हम तेरे वचन सुनने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर हमें मदद कर, हमारे मन हृदय को खोल दे और तेरे आत्मा के द्वारा हमें चला, तेरे आत्मा से हमें भर दे। मेरे हर एक श्रोताओं के संग हो पिता, उन्हें तू मदद कर कि वे तेरे वचन को सुन सके और समझ सके और तेरे नज़दीक आ सके। मेरे संग हो पिता, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मदद कर, तेरा सामर्थ दे ताकि मैं तेरा वचन को तेरे इच्छा के अनुसार बतला सकूं। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना दया से ग्रहण कर, आमीन। यहूना बपतिस्मा देने हारा के विषय यीशु का गवाह, यह मेरा आज का संवाद का शीर्षक है। यहूना बपतिस्मा देने वाला प्रथम व्यक्ति था जिसने मसीह के राज्य का सुसमाचार प्रचारित किया और दुख उठाने में भी वह प्रथम रहा। निर्जन जंगल की खुली हवा में जहाँ पर उसके आह्वान पर भीड़ की भीड़ उमड़ी पड़ रही थी, अब वह एक अंधेरी काल कोठरी में कैद कर दिया गया था। वह हेरोदेस अंतिपास के किले में कैदी बनाकर रखा गया था। यर्दन का पूर्वी भाग जो अंतिपास के अधिकार में था, यहूना की सेवकाई का अधिकतर समय वहीं पर बीता था। हेरोदेस स्वयं बपतिस्मा देने वाले के उपदेशों को सुना था। पश्चाताप करने की बुलाहट को सुनकर व्यभिचारी राजा कांप उठा। हेरोदेस यहूना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसकी सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। यहूना ने बड़ी ईमानदारी के साथ उससे व्यवहार किया। उसने हेरोदेस से कहा था कि अपने भाई की पत्नी को रखेल बनाकर रख लेना तुझे उचित नहीं। एक समय ऐसा आया कि आधे मन से हेरोदेस ने सोचा कि हेरोदियास से अपने विलासिता का संबंध तोड़ ले जिसने उसको अपना बाहु पास में बांध रखा था, परंतु हेरोदियास ने उसे अपने जाल में और जकड़ लिया और बपतिस्मा देने वाले से बदला लेने के लिए हेरोदेस को फुसलाकर उसे जेल में डलवा दिया। यहूना का जीवन एक अत्यंत ही परिश्रमी जीवन था और बिना किसी कार्य के उदासी भरा कैदी का जीवन उसे बहुत भारी पड़ रहा था। सप्ताह पर सप्ताह बीतते गए परंतु कोई बदलाव नहीं आया। शंका और निराशा में वह डूब गया। उसके चेले उसे भूले नहीं थे, उन्हें उससे जेल में मिलने के लिए अनुमति थी और वे यीशु के कार्यों का समाचार उसे पहुंचाते रहते थे। उन्होंने यहूना को बताया कि किस प्रकार से लोगों की भीड़ उसके पास आ रही है और उसे प्रश्न किया कि क्यों ऐसा हो रहा है। यदि वह शिक्षक मसीह है तो उसे छुड़ाने के लिए क्यों नहीं कोई प्रयास किया? वह कैसे ऐसा होने दिया कि जो विश्वास पूर्वक उसका संदेश फैलाने वाला है वह अपनी आजादी और शायद जीवन से ही हाथ धो बैठे? यह प्रश्न प्रभाव डाले बिना नहीं रहे। यहूना को जो सलाह दी जा रही थी उसमें शंका के लिए स्थान था। इन चेलों की बातों को सुनकर शैतान आनंदित हो रहा था और देख रहा था कि प्रभु के संदेशवाहक का हृदय किस प्रकार से घायल हो रहा है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्राय एक अच्छे व्यक्ति के मित्र लोग किस प्रकार से उसके विषय में सोचते हैं। उसे अपनी विश्वसनीयता को जताने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, परंतु वास्तव में वे खतरनाक दुश्मन होते हैं। बहुत बार तो उसके विश्वास को मजबूत बनाने के स्थान पर उनकी बातें उसे निरुत्साह और चिंतित कर देती हैं। यीशु के शिष्यों की तरह ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी मसीह के राज की प्रकृति को नहीं समझ सका। उसने आशा लगा रखी थी कि यीशु दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा और जैसे जैसे समय बीतता गया और मुक्तिदाता ने राज्य अधिकार का कोई दावा नहीं किया तो यूहन्ना चिंतित और परेशान हो गया। उसने लोगों के सामने घोषित कर रखा था कि यशायाह भविष्यवक्ता के कहे वचनों के अनुसार प्रभु का मार्ग तैयार करना है। उस निर्जन जंगल के भविष्यवक्ता के लिए यह सब घटनाएं उसकी समझ से बाहर की रहस्य मालूम दे रही थी। घंटों तक बुरी आत्माओं की फुसफुसाहट उसकी आत्मा को घायल कर रही थी और एक भयानक डर उस पर छा गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि एक लंबे समय से जिस मुक्तिदाता की राह देख रहे थे वो अभी तक नहीं आया? तो फिर उस संदेश का क्या अर्थ हुआ जिसे देने के लिए उसे बुलाया गया था? अपने उद्देश्य में असफल रह जाने के कारण यूहन्ना अत्यंत निराशा और कड़वाहट से भर गया। उसने आशा लगा रखी थी कि परमेश्वर द्वारा दिया हुआ संदेश उतना ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होगा जितना कि आज्ञाओं को पढ़ते समय यशायाह और एज्रा के दिनों में हुआ था। दूसरा इतिहास 34 नहेमिया 8:9 और गंभीरता के साथ पश्चाताप का कार्य किया जाएगा और लोग परमेश्वर की ओर लौट आएंगे। इस कार्य को सफल बनाने के लिए उसने अपना पूरा जीवन ही न्यौछावर कर दिया था। क्या यह सब व्यर्थ गया? स्वर्ग से आकाशवाणी के वे शब्द कबूतर के रूप में उतरता पवित्र आत्मा, दाग रहित यीशु का जीवन, पवित्र आत्मा की वह सामत जो यूहन्ना पर स्थिर हो गई थी जब वह मुक्तिदाता के सामने आया था, और पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणियों की वह गवाही, ये सभी बात बता रही थी कि यीशु नासरी है और वह प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा है। यूहन्ना ने अपने साथियों से अपनी शंका और कठिनाइयों के विषय में कोई चर्चा नहीं किया। उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि पूछताछ करने के लिए वह उसे संदेश भेजेगा। अपने दो शिष्यों को इस आशा के साथ यह काम सौंपा कि मुक्तिदाता से साक्षात्कार करने पर उनका विश्वास प्रमाणित हो जाएगा और वे अपने भाइयों के लिए निश्चय का समाचार लाएंगे, और आशा के साथ चाहा कि मसीह उसके विषय में भी दो शब्द कहे। शिष्य लोग अपने संदेश के साथ यीशु के पास आए। क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बात जो हैं? अभी बहुत दिन नहीं बीते थे जब बपतिस्मा देने वाले ने संकेत करते हुए कहा था, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, यूहन्ना 1:29, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, यूहन्ना 1:2। और अब यह प्रश्न, क्या तू वही है? इंसानी प्रकृति के लिए यह एक बहुत ही कड़वाहट भरी निराशा है। यदि यूहन्ना विश्वासी रूप में उसके आगे चलने वाला होते हुए भी मसीह के मिशन को समझने में असफल रहा तो स्वार्थी भीड़ के लोगों से क्या आशा की जा सकती है? मुक्तिदाता ने उन शिष्यों को तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। आश्चर्य से भर कर वे लोग उसकी चुप्पी को देख रहे थे, जबकि कष्ट उठाने वाले रोगी उसके पास चंगाई पाने के लिए आ रहे थे। अंधे लोग भीड़ को चीरते हुए उसके पास पहुंचना चाह रहे थे, हर प्रकार के रोगी अपने अपने हियाव से चंगाई प्राप्त करने के लिए यीशु के पास आ रहे थे। कुछ को तो उनके मित्र लोग ला रहे थे और बहुत बेसब्री के साथ मसीह तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। इस महान चंगाई देने वाले की वाणी बहरों के कानों में गूंज रही थी। एक मधुर शब्द उसके हाथों को केवल छू भर लेने की चाह, अंधों की आंखें खुल गई कि वे सूरज के प्रकाश को देख सके, प्राकृतिक दृश्यों का नजारा देख सके, अपने मित्रों के चेहरे को स्वयं देख सके और अपने उद्धारकर्ता के दर्शन कर सके। यीशु ने रोगों को ललकारा और ज्वर भाग खड़ा हुआ। जो मरणासन दशा में थे उनके कानों में उसकी आवाज पहुंची और वे चंगे तथा शक्तिपूर्ण होकर उठ खड़े हुए। बुरी आत्माओं द्वारा सताए हुए पीड़ित उसके आदेश का पालन किए और उनका पागलपन उनसे दूर भाग गया और वे उसकी महिमा और स्तुति करने लगे। जब वह उनके रोगों को चंगा कर रहा था उस समय उन्हें सिखाता और समझाता भी जा रहा था। गरीब किसान और मजदूर जिन्हें रब्बी लोगों ने अछूत कहकर धुतकार दिया था उसके अति समीप एकत्रित हो गए थे और वह उनसे अनंत जीवन के विषय में बातें कर रहा था। इस प्रकार से वह दिन बीतने को था। यहूना के चेले सब कुछ अपने कानों से सुन और अपनी आंखों से देख रहे थे। दिन के अंत में यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि जाओ, जो कुछ यहाँ पर देखा है यहूना को बताओ। और यह जोड़ते हुए उसने कहा, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। लूका 7:23। बपतिस्मा देने वाले के व्यक्तिगत जीवन के जो आत्म परित्याग के सिद्धांत थे वही सिद्धांत मसीह के राज्य के थे। यहूना जानता था कि इसराइल के शासकों के ये सिद्धांत और अपेक्षाएं कितनी दिखावटी हैं। जो बातें मसीह के ईश्वरत्व को प्रमाणित कर रही थी वे उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखती थीं। वे ऐसे मसीह की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसके लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं की गई थी। यहूना ने देखा कि मुक्तिदाता का मिशन उनसे केवल घृणा और निंदा ही प्राप्त कर पाएगा। वह मार्ग तैयार करने वाला उस दुख को उठा रहा था जिसे अवश्य है कि मसीह स्वयं उठाए तथा उस तलछट भरे प्याले को पिए। मुक्तिदाता के शब्द, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए, यह एक सजनतापूर्ण डांट यहूना के लिए थी। यहूना ने अभी तक आशा नहीं छोड़ी थी। वह मसीह के मिशन की प्रकृति को अब अधिक समझने लगा था। चाहे प्राण रहे या जाए, उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया ताकि उत्तम रूप से उस कार्य को कर सके जिसे वह प्यार करता था। उन संदेशवाहकों के चले जाने के बाद यीशु ने यहूना के विषय में लोगों को बताया। मुक्तिदाता का हृदय उस विश्वसनीय गवाह के प्रति जो हेरोदेस के कैदखाने में बंद था सहानुभूति से उमड़ पड़ा। वह ऐसा नहीं होने देगा कि लोग ऐसा विश्वास करने लगे कि परमेश्वर ने यहूना को भुला दिया है या परीक्षा के कारण उसका विश्वास डगमगा गया है। उसने लोगों से कहा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? यीशु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। यहूना को उसके समय के अनुसार पाप और अत्याचार के लिए ललकारने को बुलाया गया था और उसके उद्देश्य के अनुरूप ही उसका सादा जीवन और सादा पहनावा था। यीशु ने फिर कहा, तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने गए थे? हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यहूना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। जैसा कि मसीह का राजदूत यहूना भविष्यवक्ताओं से भी बढ़कर था, जबकि भविष्यवक्ताओं ने जो कुछ देखा था वह मनुष्य के जन्म लेने से पहले बहुत समय पहले देखा था। और जहां तक यहूना का प्रश्न है, उसने आकाशवाणी होते हुए सुना और शारीरिक रूप में मसीह को देखा और लोगों तथा इसराइल के सामने गवाही दिया कि यह परमेश्वर का भेजा हुआ है। फिर भी यीशु ने कहा, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटा से छोटा है वह उससे बड़ा है। भविष्यवक्ता यहूना दो व्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक कड़ी था। परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में उसने आज्ञाओं के संबंध को प्रकट किया और भविष्यवक्ता के रूप में मसीही व्यवस्था को प्रकट किया। वह एक आने वाला महान प्रकाश के पहले का छोटा दिया था। यहूना का दिमाग पवित्र आत्मा द्वारा प्रकाशित था ताकि वह लोगों पर उसकी झलक प्रस्तुत कर सके, परंतु इस संसार में कोई दूसरा प्रकाश स्तंभ ना तो आज तक हुआ है और ना कभी होगा जो पापी मनुष्यों पर इतनी सफाई से किरने बिखरे जिस तरह से यीशु की शिक्षाएं और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मसीह और उसके कार्य को बड़े धुंधले तरीके से उस छाया रूपी बलिदानों में समझा गया था। यहाँ तक कि यहूना स्वयं ने भी उद्धारकर्ता द्वारा भविष्य में पाने वाले अनंत जीवन को नहीं समझ सका था। अपने जीवन के उद्देश्यपूर्ण कार्य में आनंद प्राप्त करने के साथ साथ यहूना का जीवन बहुत ही दुखमय रहा। उस जंगल के अतिरिक्त और कहीं भी उसकी आवाज को सुनने वाला कदाचित ही कोई रहा होगा। उसके हिस्से में अकेलापन ही रहा और उसको ऐसा अवसर नहीं दिया गया कि वह अपने परिश्रम का प्रतिफल देख सके। उसे अवसर नहीं मिला कि वह मसीह के साथ मिलकर उस महान प्रकाश को फैलाने में ईश्वरीय सामर्थ की गवाही को देख सके। उसको अवसर नहीं मिला कि वह अंधों को आंखें पाते हुए देख सके, बीमारों को चंगाई पाते हुए देख सके और यहाँ तक कि मुर्दों को जीवित होते देख सके। उसे उस प्रकाश को देखने का अवसर नहीं मिला जो मसीह के प्रत्येक वचन से झलकता था। प्रतिज्ञा की हुई भविष्यवाणियों पर महिमा की पड़ती हुई किरणों को देखने का उसे अवसर नहीं मिला। छोटे छोटे और साधारण चेलों ने उसके महान कार्यों को देखा और उसके मधुर वचनों को सुना। वे लोग यहूना बपतिस्मा देने वाले से अधिक सौभाग्यशाली रहे, इसलिए कहा गया कि उससे भी बढ़कर। यहूना बपतिस्मा देने हारा का विश्वास यीशु मसीह में था, पर कुछ समय वह विश्वास डगमगा रहा था। इसलिए कहा गया है कि जो छोटे से छोटे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होंगे वे उससे बड़े होंगे। हमारा विश्वास यीशु मसीह में डगमगाना नहीं चाहिए, हमारा विश्वास यीशु मसीह में मजबूत होना चाहिए, तब हम यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तभी हमारा विश्वास यहूना से बढ़कर होगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर हमें मदद करे उसके आत्मा के द्वारा कि हम यीशु मसीह में डगमगाता हुआ विश्वास नहीं परंतु एक दृढ़ विश्वास करें। परमेश्वर हमारी मदद करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के समीप आते हैं। हमने तेरे वचनों को सुना है, तू हमें आशीषित कर। तूने हमें सिखाया यहूना बपतिस्मा देने हारा के जीवन से कि वह तेरा काम किया। कुछ समय उसका विश्वास डगमगा रहा था पिता, पर तू उसे मदद किया और हम सबों का विश्वास को भी मजबूत किया। हमें ऐसा विश्वास दे पिता कि हम यीशु मसीह को अपना मसीहा माने और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने में हमारा विश्वास कभी हिले ना, इतना दृढ़ विश्वास रहे कि हम हर एक समय किसी भी परेशानियों में हम दृढ़ रहें और तेरे अनुग्रह से हम तेरे राज्य में प्रवेश कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुना ग्रहण कर। आमीन। यीशु बुला रहा
यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindisamc@sudadvent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।